इसके बाद इधर अब तरतीब से मुर्दा दिल, तो मैं इसी को पढ़ूंगी। वैसे अगर मैं इस बुक की तरतीब चेंज करती तो मेरा ख्याल है मैं इसके बाद बीमार दिल करती, लेकिन आइए देखिए जरा मुर्दा दिल। असल में इन्होंने अपोजिट पे लिया कि एक एक्सट्रीम कल्बे सलीम है तो दूसरी एक्सट्रीम मुर्दा दिल है। मुर्दा आप समझते हैं, डेड हार्ट। ये गुज़श्ता दिल से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, जो ना अपने रब को पहचानता है, ना इसके अहकाम के मुताबिक इबादत करता है, ना मोहब्बत ना नाराजगी इन अहकाम के मुताबिक है, बल्कि ख्वाहिशात और लज्जतों में इसकी जिंदगी गुजर रही होती है। हाईलाइट करें, ईट ड्रिंक बी मैरी, ये है ख्वाहिश, गो पार्टी और ये और स्लीप एंड देन रिपीट, रोज इनके लिए जिंदगी एक फन है। अगरचे वो काम अल्लाह ताला की नाराजगी और इसके गजब का सबब ही क्यों ना हो, तो हकीकत में वो गैर अल्लाह की इबादत करता है। मोहब्बत, खौफ, उम्मीद, खुशी, नाराजगी, इज्जत और जिल्लत, हर लिहाज से वो गैर अल्लाह की इबादत में मशगूल है। अब आप बैठ के जरा सोचिएगा, ये गैर अल्लाह में क्या क्या आते हैं? क्या ये सारे काम जो इधर लिखे हैं, ये कोई सिर्फ बुतों के साथ लिखे हुए हैं, या कब्रों में फौत हुए बुजुर्गों के नाम पे? नहीं, यहां से मैं और आप अपना बुत पहचाने। वो जैसे वो शरीबु फी खुलूबिहिमुल इजल, और उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत पिलाई गई। मैं और आप अपना बछड़ा ढूंढ लें, इंशाल्लाह उसको पकड़ लेंगे तो अल्लाह के हुक्म से तौहीद खालिस नसीब होगी। अगर बुगज रखे तो अपनी मर्जी से, और अगर मोहब्बत करे तो अपनी मर्जी से। वो मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए मुझे उसे बुगज है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं तो मुझे उससे मोहब्बत है, ये मेयार होना। और आप देखिए अक्सरियत का यही मेयार है, आई डोंट लाइक इट, आई लाइक इट। छोटे बच्चे को आज माँ ये सिखाती है, बेटा तुम्हें क्या चाहिए, बेटा तुम्हें क्या पसंद है? नहीं, अल्लाह को क्या पसंद है? बच्चों से पूछा करे, बेटा वो पहनना जो अल्लाह को पसंद है, बेटा जी वो खाना है जो अल्लाह को पसंद है। बचपन से ये बुत अगर टूट जाए ना, तो बाद में टूटने बहुत आसान हो जाते हैं। फिर इसके बाद इसकी ख्वाहिशात इसका इमाम और कायद है, इसको हाईलाइट करें। हर एक किसी को फॉलो जरूर करता है, मुर्दा दिल वाले का इमाम, कायद, लीडर, गाइड, कुछ भी नाम ले लें, वो उसका अपना दिल है। दिल के पीछे जो कहते हैं दिल का मामला, करें क्या, फिर दिल ही तो है। और मोहब्बत और जंग में सब जायज है, कैसे सब जायज है? मार खाएंगे आप बाद में जाके, ये कैसी बात होगी कि सब कुछ जायज है? ये जो मन चले जुमले हैं ना, ये ऐसे ही लोगों के होते हैं जो सिर्फ अपने मन की मानते हैं। जहालत इसे लिए जा रही है, ये भी नोट करें, मुर्दा दिल वाले को इल्म अच्छा नहीं लगता, कहता है ऐसे ही खाम कर लाइट जल गई तो अपने ऐप दिखेंगे, चुप करो, अंधेरों में पड़े रहो, रोमांटिक माहौल है। और गफलत पर इसकी सवारी, ये भी जुमला देखें, गफलत पर इसकी सवारी है। दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे दिल से पनाह में रखे। सबके लिए दुआ करें, अगर आपको महसूस होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह दिल मुर्दा नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, किसी हद तक हो सकता है पूरा नहीं, तो दूसरों के लिए दुआ करें। बड़े मन चले आपको दुनिया में दिखेंगे। वो किसी की शर्ट के पीछे लिखा हुआ जुमला याद आ गया, डोंट फॉलो मी, आई एम लॉस्ट। और कहते हम सारा दिन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन। और अमली जिंदगी में भटके, मुंह के पीछे भटकते हैं, जो वो खुद डूबेंगे तो आपको भी तो डुबोएंगे ना। तो हमेशा किसी के पीछे लगने से पहले देखिए वो खुद किधर खड़ा है। कुरान की आयत मौजूद है कि ऐसे बुरे भटके हुए लीडर कल कहेंगे, हमने कब कहा था तुम हमारे पास आओ, हम तो खुद भटके हुए थे, आज हम तुम्हारी क्या मदद करें? उस वक्त फिर वो सब लीडर जिनको बेसोचे समझे बंदा फॉलो करता है, उनके लिए हसरत का जरिया होंगे। तीसरी किस्म में बीमार दिल, ये दिल बीमारी समेत जिंदा होता है। इसमें दो कुव्वतें होती हैं, एक इसे खैर की तरफ जबकि दूसरी शर की तरफ खींचती है, फिर इनमें से जो गालिब आ जाए तो दिल वैसा ही हो जाता है। सोचे जरा, दोनों फोर्सेस हैं। इसकी एक मिसाल दी थी तज़किया नफ्स के लेक्चर में, मुझे याद आ रहा है, कि बग्गी और उसको दो घोड़े लग गए हैं, एक काला और एक सफेद। काला जमीन में घुसता है, सफेद ऊपर उड़ना चाहता है। अगर एक को उतारेंगे तो या उड़ जाएंगे या धंस जाएंगे, करना के दोनों घोड़ों को लेकर बैलेंस करना है, ये है असल में मसला सबसे बड़ा। बैलेंस तरीके से जीना और जाना, इसकी तैयारी करें। दीन भी रखें, दुनिया भी रखें, लेकिन सिर्फ दुनिया नहीं। लोग कहते हैं फिर दीन भी रखो दुनिया भी रखो, तो सारी दुनिया हमारे दीन में आती है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे दीन में हर ख्वाहिश के पूरे होने की पूरी गुंजाइश मौजूद है। तो लिहाजा इस दिल पर दोनों तरफ से हमले होते हैं, फिर इनमें से जो गालिब आ जाए तो दिल वैसा ही हो जाता है। इसमें अल्लाह की मोहब्बत, ईमान, इखलास और तवक्कुल की मौजूदगी से जिंदगी के आसार नजर आते हैं। यदि मस्जिदों में भी दिखा जाता है, ये उम्रे भी करता है, कुरान भी पढ़ता है ऐसा बंदा, ऐसा तो नहीं है कि ये चीजें नहीं है, लेकिन अगर शहवात की मोहब्बत, इनके हसूल की हिरस, हसद, तकब्बुर, खुदनुमाई, सबसे ऊंचा बनने का शौक और हकूमत के हसूल के लिए जमीन में फसाद करना, निफाक, रियाकारी, खुदगर्जी और कंजूसी जैसी बुरी आदत हो तो इसकी हलाकत का सबब है। अल्लाह तआला से दिल से हमें पनाह में रखे। 3 सेकंड तक सोचें, भला अमूमन लोगों की कसरत किस किस्म का दिल रखती है? अपने आंखों में तसव्वुर में लाएं, अक्सरियत को सोचें, क्या कल्बे सलीम है? वो तो उंगलियों पे गिन लें, कल्बे बीमार या कल्बे मुर्दा। बीमार दिल वाले मुसलमान ज्यादा है और मुर्दा दिल वाले काफिर ज्यादा है। ह्यूमैनिटी में से ढूंढेंगे ना तो मुर्दा दिल वाले ज्यादा है, और मुस्लिम्स में से ढूंढेंगे ना तो बीमार दिलों वाले ज्यादा है। खलत व अमलन सालिहन व आखरा सहीया, इन्होंने अच्छे और बुरे सारे अमल जमा किए हुए। सूरह तौबा में अल्लाह ताला कहते हैं, ना नेकी का कोई मौका छोड़ते हैं और ना गुनाह छोड़ते हैं, ना दीन की महफिलों से गायब होते हैं, ना दुनिया की महफिलों से गायब हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला हमें यक रुखा कर दे, एक जैसा कर दे। अब आप देखिए कि दिल किस्में और वजूहात और उनकी हमने डिफरेंट काइंड्स तो पढ़ ली, अब इनका इलाज क्या है? दिल की तमाम बीमारियों का इलाज कुरान पाक की इन आयात में मनकूल है। इन आयतों में चूंकि बिल्कुल क्लियरली दिल की बात की गई है, इसलिए यहाँ नोट की गई है। इसको कोई वजीफा नहीं आप समझ सकते कि ये आयतें पढ़ने से दिल सलामत हो जाता है, ऐसा नहीं होता। या अय्युहन नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फिस्सुदूर व हुदा व रहमतुल लिल मुमिनीन, सूरत यूनुस आयत 57। ऐ लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक ऐसी चीज आई है, वो नसीहत है, और दिलों में जो रोग हैं इनके लिए शिफा है, और रहनुमाई करने वाली है, और रहमत है ईमान वालों के लिए। यही आपके स्कूल का मोटो भी है, आप किसी भी बैनर पे देख लें, ऊपर यही आयत लिखी होती है और यहाँ यही दिया जाता है। कोई पूछे आप नूरुल कुरान क्या है, तो आप कह दें दिलों की बीमारियों का इलाज और मौइज़ा और रहमा। अल्लाह ताला हमें इसी पे जोड़ दे, हम इसी पे खुश हैं, हमें और कुछ करना भी नहीं है। तो जब तक दिल में कुरान नहीं आता, दिल की बीमारियां नहीं जाएंगी। फिर इसी तरह से सूरत बनी इसराइल 82 में आता है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। ये कुरान जो हम नाजिल कर रहे हैं, मोमिनों के लिए तो सरासर शिफा और रहमत है, हाँ जालिमों को सिवाय नुकसान के और कोई ज्यादती नहीं होती। अल्लाह अकबर। यानी कुछ लोग इस कुरान को पढ़ के फसले बहार का समा देते हैं और कुछ कूड़े के ढेर की तरह बदबू देते हैं। देखिए कि बारिश बरसती है ना, फूलों की क्यारी पे बरसेगी तो खुशबू आएगी, ट्रैश के बिन पे गिरेगी तो बू आएगी। तो कुरान पढ़ के कुछ का दिल और खूबसूरत हो जाता है, अमल और अच्छे हो जाते हैं, और कुछ का बिल्कुल उलट होता है। अल्लाह ना करे हम में से किसी के साथ ऐसा हो कि सुन सुन के सुन हो जाए, और इस किताब की फिर वो कदर भी हमारे दिल में ना रहे कि कुरान भी हो और हम उस वक्त छोड़कर कुछ और कर रहे हो, और अल्लाह ताला हमारे दिलों को जोड़ दे। अब दिल तो थे 3 किस्म के, दिल की बीमारियां 2 किस्म की हैं। इंसान इसकी तकलीफ महसूस नहीं करता, ये पहली किस्म है। ये बीमारी जहालत और शकूक व शुबहात से पैदा होती है। तकलीफ के एतबार से ये ज्यादा सख्त है, लेकिन दिल की खराबी की वजह से इंसान इसको महसूस नहीं करता। किसको समझ आई ये बात? ऐसे तो नहीं ऊपर से गुजर गई? यानी वो जिसको कहते हैं ना कि दे डोंट नो, कि दैट दे डोंट नो, कुछ को ये पता ही नहीं कि उनको नहीं पता, और कुछ के दे नो दैट दे डोंट नो। आप समझ आइए, इंग्लिश अपनी अपनी है ना, उर्दू गैरों गैरों की जुबान है, ऐसे ही है ना। यानी वो कहते हैं ना कि कौम के दिल से एहसास जिया जाता रहा, ये है जहालत की बात। और मैं आपको दुख के साथ कहूंगी, आज उम्मत में ये बीमारी आम है। हमें खुद नहीं पता कि हम क्या छोड़े हुए, हमें खुद नहीं पता हमारा कितना नुकसान हो रहा है। दूसरी किस्म होती है कि इंसान को तकलीफ का एहसास होता है, मसलन परेशानी, गम, फिक्र और गुस्सा। ये बीमारी तबई दवाओं से खत्म हो सकती है अगर तशखीस और इलाज दुरुस्त किया जाए। तो क्या दो किस्म की बीमारी है? एक वो जिसकी तकलीफ ही नहीं पता, बेहिसी कह लीजिए, जैसे बेहोश हो गए हैं, पत्थर दिल इस तरह कह लें। ये कब होती है? जब बंदा जाहिल होता है। देखिए इसको ऐसे समझिए कि जिसको पता है कि बैक्टीरिया क्या होता है, मतलब साइंटिस्ट है कोई या मेडिसिन से ताल्लुक रखता है, वो एक एक चीज को देखकर खाएगा, इसमें वायरस है, इसमें बैक्टीरिया है, इसमें इतनी कैलोरीज है, इसमें कोलेस्ट्रॉल होगा। और जिनको कोई पता ही नहीं, वो कहते हैं देसी घी जब तक ना डाले रोटी का मजा ही नहीं आता। फर्क है ना, एक को पता एक को नहीं पता, बस ये दोनों का फर्क है। ठीक है, अब इलाज चार तरीकों से। दिल कितनी किस्म के थे? तीन। बीमारियां कितनी किस्म की? दो। इलाज चार है। पहला इलाज कुरान। बिला शिबा कुरान करीम सीने की बीमारियों की शिफा है। ये शिर्क, कुफर, शुबहात और शहवात की गंदगी जाहिल कर देता है। जो सच्चे दिल से कुरान मजीद सीखे और इस पर अमल करे तो ये ईमान वालों के लिए हिदायत और रहमत का बायस होगा, यानी दुनियावी उखरवी बदला मिलेगा। दलील क्या है इस बात की? सूरत अल अनाम आयत 122, अब अमन कान मैतन फहयैनाहु वजअलना लहु नूरन यमशी बिही फिन्नास कमम मसलुहु फिज़्ज़ुलुमाति लैसा बिखारिजिम मिन्हा। इस आयत को भी मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। मुझे बिल्कुल तस्वुर में कोई आने लगता है, अंधेरी रात थी और उसमें कोई साया चल रहा है, इतने में एक दूर से रोशनी की एक किरण दिखी, एक चिराग उसकी जिंदगी में आता है कुरान का। कोई कहते है आओ मैं तुम्हें कुरान से जोड़ू। जब वो कुरान आया वजलना लहू नूरन, सारा माहौल रोशन हो गया। वो कुरान सिर्फ इस क्लासरूम में नहीं रहा, यमशी बिही फिन्नास, इसी की रोशनी में फिर दुनिया में चलता फिरता है, पूरे कॉन्फिडेंस से इस कुरान का अमली नमूना बनता है। क्या वो बराबर है उस शख्स के जो तारीकियों से निकल ही नहीं पाता? ये कौन सा है ना, जिसने कुरान के नूर को जिंदगी में जगह दी और ना उसकी रोशनी में चला। तो कुरान का नूर ले लीजिए, आप देखिएगा कि वो दुआ आपकी पूरी हो जाएगी जो आपने बड़ी गैर शौरी हालत में बचपन से कई दफा सुनी और मांगी होगी अपने स्कूल में, कि हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तो ये कहा करें कि अल्लाह हमें हिदायत के छोटे छोटे चिराग बना दे। अगर ये तड़प है ना अंदर, अल्लाह आपसे जरूर काम लेगा। आपने जुगनू देखा? मैंने अभी पिछले साल बहुत देखे हैं, आगे इस बचपन में तो देखे ही होंगे, लेकिन जो पिछला मेरा साल ज्यादा उसमें वक्त अटलांटा में गुजरा, तो जहां हम थे ठहरे हुए, तो पीछे बहुत बड़ा बैकयार्ड, यानी आप कह लेंगे ये पूरा हिस्सा जो आपके स्कूल के पीछे की जगह, ये सिर्फ बैकयार्ड था, पूरी कोर्ट, वो जैसे कोर्ट खेलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसकी, ग्राउंड्स होती हैं 19, तो उसमें बहुत बहुत बड़ा था, पीछे दूर तक झीलें भी अंदर और बतखें भी सब। तो बिल्कुल शाम के करीब जो हमारा स्टडी रूम था ना, उसके बाद पूरी पीछे सारा घर ही शीशे की खिड़की थी। तो वहां रात को जब कमरे की लाइट बंद करें ना, तो पीछे बल्ब थे। पहले दिन तो मैं डर गई ये क्या है, तो वो बाद में देखा तो वो जुगनू थे। रात होती थी तो सब जुगनू वो शीशे में आते थे, लाइट बंद करके देखे, अमेजिंग सीन जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। फिर मैंने उसके ऊपर बहुत सारी चीजें भी बाद में पढ़ी कि इनकी खूबियां क्या है। तो आप और मैं छोटे छोटे जुगनू बन जाए, हम नहीं कहते कि हम बहुत बड़े बल्ब हैं, कुछ एंगलीर तो नहीं है हम, बस जुगनू बन के अपने अंधेरे दूर कर दें और दूसरों की हिदायत की फिक्र ना होना इस बात की दलील है कि अभी अपनी भी हिदायत पूरी नहीं। मुझे नहीं समझ आता कि सीने में कुरान हो और बंदा ठंडा होके बैठ जाए, बस अभी और कुछ नहीं करना, अब नहीं कर सकते, नहीं हालात नहीं, ये नहीं वो नहीं, अब कुछ और करना है। देखिए मैं इल्म लेती ही रहूं, लेती ही रहूं, लेती ही रहूं, और मैं आपको ना दूं और मेरी मौत का वक्त आ जाए, तो मैंने वो सारे आलिम, हाफिज, फाजिल और फकीह और सब बन के क्या किया? मैंने लोगों को नहीं दिया। इनहेल लीजिए, जैसे कहते हैं ना इनटेक, कुछ लो फिर दो भी। तो फितरत का असूल है, देते भी रहे लेते भी रहे, बहुत ग्रो करेंगे। जो लोग लेना छोड़ देते हैं अंदर से वो तड़प खत्म हो जाती है, और जो सिर्फ लेने के शौक में कहते नहीं अभी नहीं, अभी हम खुद सीख रहे हैं, तो फिर आप सारी जिंदगी कुछ नहीं कर सकते। मैंने जो सबक अपनी पहली टीचर से सीखा था आज तक नहीं भूली, कि लो भी और दो भी। जिस दिन लेना छोड़ देंगे आपको नहीं देने को भी दिल नहीं करेगा। तो बहरहाल ये आयत आपका मेरा मोटो हो सकता है। तो पहली चीज कुरान, इस दुखी इंसानियत के हाथों में जाके एक एक कुरान पकड़ा दें। कौन सा दावा वाला कुरान? नहीं, तड़प लेके उठें कि मैंने एक एक बहन तक ये मैसेज देना है कि आप मेरी जिम्मेदारी पे आप आके बैठे हैं, अगर आपका कुछ नुकसान हो गया, कुछ बिगड़ गया, तो मैं आपकी जिम्मेदार हूं। लेकिन ये कुरान ही लोगों को डिप्रेशन और दुखों से निकालेगा और बाकी चीजों से भी। दूसरी चीज, दिल तीन बातों का मुख्ताज है। नंबर एक, दिल को कुव्वत देने वाली चीज का बंदोबस्त करना, इनर्जी दीजिए। ये काम ईमान और अमल सालेह के साथ इताअत गुजारी से मुमकिन है। जरा दोहराऊं इसको, देखिए आप और मैं खाना खाते हैं तो हमें क्या मिलता है, उससे एनर्जी मिलती है। चाय पीते हैं तो चौक चौबंद हो जाते हैं, नींद उड़ जाती है, खाना खाते हैं फ्रेश हो जाते हैं, है ना। हमारे दिल को भी कुव्वत चाहिए, और ये कहाँ से आती है? ईमान और अमल सालेह के साथ इताअत गुजारी। मैंने अपनी आंखों से ये चीज देखी है कि जब कुरान से हाथ छूटता है ना, या हाथ से कुरान छूटता है, इसमें कमी आ जाती है। फिर एक वक्त आएगा आप कहेंगे मैं टू मच नहीं हो गई थी, ये मैं कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीमिस्ट हो गई थी, शुक्र है मैं बच के आ गई हूँ, वापस चलो उन्हीं महफिलों में उन्हीं रौनकों में। 1-2 साल लगता है, वहीं पलट जाता है बंदा धक्का खाकर जहां से चला था। जैसे आप तेज चलते हुए भागते हैं ना, तो जब रुकती है गाड़ी उतना ही बैकवर्ड स्पिन होता है। तो लिहाजा हर वक्त दिल को ताकत देने वाली चीज साथ रखें। फिर दूसरी चीज, नुकसानदेह उमूर से इज्तनाब। गलत चीजें, गुनाहों वाली, जिससे आपको नुकसान हो, इससे रुकेंगे तो आपका दिल सही रहेगा। और ये काम हर किस्म की नाफरमानी और शरई मुखालफत से परहेज करके हो सकती है। बात वाज़ेह? यानी हराम काम नहीं करने। हम मसलहत पसंद हो जाते हैं, अब क्या करूं ना, फिर शोहर भी तो खुश होंगे तो फिर ही जन्नत मिलनी है। हम तो अपने साल के बच्चे से भी डरते हैं, और हम उसको भी उससे ज्यादा खुश रखना चाहते हैं जितना हम अल्लाह को खुश रखना चाहें। हर एक को खुश रखना चाहते हैं, और अल्लाह के बारे में हमारा ख्याल है वो हमसे खुश ही है, वो खुश ही है, वो हो जाएगा। इतना लेयर लेते हैं बाज दफा हम अल्लाह को कि छोटे भाई को भी ना कैसे ले। वल्लाही, तो अल्लाह को खुश रखना, अल्लाह की नाफरमानी से बचना। तीसरी चीज, हर नुकसानदेह काम से अलहदगी इख्तियार करे। ये काम तौबा इस्तगफार से ही मुमकिन है। पिछले गुनाहों पे शर्मसारी। पहला इलाज कुरान, दूसरा इलाज इन तीन चीजों का दिल को एहतमाम करें। कौन कौन सी चीजों का? कुव्वत देने वाली चीजें, नुकसानदेह उमूर से बचना, गुनाहों से बचिए, और तीसरी चीज, हर नुकसानदेह चीज से अलहदगी। इसमें सारी हराम और कबी चीजें आती हैं जिससे शरीयत ने रोका है। तीसरी चीज बहुत अहम है, और ये आखिरी टॉपिक है इस बुक का और इस सेशन का अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाहिशात के तसल्लुत की बीमारी का इलाज। ये इलाज दो तरीकों से मुमकिन है। यानी तीसरा क्या, ख्वाहिशों का इलाज करें। ये बहुत बड़ा फितना है, ख्वाहिशों का फितना। ये इलाज दो तरीके से मुमकिन है। नंबर एक, नफ्स का मुहासबा, यानी अपने आप को खुद चेक करें मैं कितनी ख्वाहिश परस्त हूं। बस मुंह में बात आई पूरी हो जाए, दिल में आया करके रहूंगी। ये खाना है, आधी रात है गाड़ी निकालो लेके आऊंगी खाना है। ये पहनना है, पहन के रहूंगी, हर कीमत पे लेनी है। एक नजर पड़ गई किसी बुकलेट पे या किसी ब्रोशर पे, नहीं ये मेरे घर में होना चाहिए। तो ये सिम्टम्स है इस बात की कि ख्वाहिशों की बीमारी आ गई। अफराई तमने तखज इलाहु हवाहु, सूरत फुरकान में अल्लाह तआला कहते हैं, एक और भी जगह आता है कुरान में, क्या तुमने उसको देखा है जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को खुदा बना लिया। तो नफ्स का मुहासबा करें और हर ख्वाहिश को डिले करें। अभी नहीं पूरी करूंगी, मैं खाने की ख्वाहिश है ना, पानी पीना है, जूस ना पी लूं फ्रिज से, नहीं घड़ी देख के 5 मिनट बाद उठूंगी, फिर अगली दफा 6 मिनट 7 मिनट बढ़ाएं टाइम को। ऐसा ऐसा आप कहेंगे खबरदार अभी नहीं पीना। हजरत आयशा कहती है जो दिल चाहे वो खा लेना, ये इसराफ है। तो हम तो हैं ना मुसरिफ, और मुसरिफ कौन है? कुरान से देख लीजिए। तो अपना मुहासबा करना। फिर दूसरा, ख्वाहिशात की मुखालफत, यानी जो कहे दिल वो नहीं करना, उसे ऑपोजिट करना है। फिर एहतसाब के भी दो तरीके हैं। नंबर एक, कोई काम करने से कबल इन चार बातों का ख्याल रखना जरूरी है। नंबर एक, जो काम करने जा रहा है क्या वो ये काम कर सकता है? बाज दफा ख्वाहिशें इतना जलील करती हैं बंदे को, जो कर भी नहीं सकते वो भी काम करना शुरू कर देते हैं। दूसरा, खुद से पूछिए क्या इसे करना इसे छोड़ने से बेहतर है। और तीसरा, क्या इस काम से अल्लाह ताला की रजा मकसूद है। और चौथा, क्या इस दौरान किसी का तावुन दरकार होगा? अगर वो काम तावुन का मोहताज है और इसके मुआविन भी हों जो इसे पाया तकमील तक पहुंचाएं, अगर इन सब बातों का जवाब मुस्बत यानी पॉजिटिव हो तो कर ले, वरना छोड़ दे। मेरा ले, हम में से आधे काम तो छोड़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि हम जो ख्वाहिशें पूरी करते हैं ना, सिर्फ तब तक जब तक पूरी नहीं की। वो कहते हैं ना कि मिल जाए तो मट्टी, ना मिले तो सोना है, ये दुनिया जिसको लोग दुनिया कहते हैं। वो जोड़ा जो आपने किसी बुटीक में देख लिया, वो रातों को भी आंखों में चमकता है, नमाजों में भी नाचता है, और जिस दिन आ गया एक तो दिन खुशी, और एक दफा तन पे पहन के तो देखे। हमारे वो जो क्लोजेट है, क्या कपड़ों के कब्रिस्तान नहीं बने हुए? अल्लाह मुझे माफ करे अगर मेरी इस बात से किसी का दिल दुखे, ये लाशें, ये हैंग हुई हुई है, हमारी लाशें हैंग कर दो इनको, सूली पे चढ़ा दो इनको। कभी हम पहनेंगे लेकिन अक्सर तुम पहनो, हैंगर पहनते हैं हम तो, कभी साल में एक दफा पहन ले, सिर्फ इसलिए पहनते हैं, लटका हुआ तो पहनना तो है ना, ये ख्वाहिश है, नहीं पहने, इस्तेमाल करें, खत्म। इन चीजों को माबूद बना के सजा ना रहे अपने घरों में, तो जब आप देखेंगे ना ख्वाहिशों पे काबू आएगा, वक्त बहुत बचेगा, पैसा बहुत बचेगा, दिल बच जाएगा। आप देखें ना ख्वाहिशें कोई नहीं, करें क्या फिर, कुछ और ही कर लेते हैं फिर, ना बाजार जाना, ना विंडो वॉचिंग करनी, ना सेल्स के साइन देखने, आज ले लो कल वापस। एक सिस्टर थी, वो कहती थी मुझे क्रेविंग है शॉपिंग का, लेती रहती हूँ लेती रहती हूँ। पहले मियाँ गरीब जाता है लेके आता है साथ गाड़ी भर के, तो फिर उसके फेरे शुरू हो जाते, आज ये रिटर्न करें आज वो करें, 3 माह है फिर कर देंगे। तो मैंने कहा कभी आपने सोचा कि जाने आने पे जो आपकी गाड़ी इतनी दूर जाती है कि वो खर्चा नहीं पड़ता, चीजें मंगा रही हैं फिर फ्री शिपिंग है तो बाद में वापस कर दो। ये ख्वाहिशों ने आज जंगल दिया, आप घर बैठ के यहाँ बैठ के शॉपिंग करें, आपको क्या जरूरत है मॉल जाने की? नेट से जो शॉपिंग करते हैं, मैं कहती हूँ इससे ज्यादा खतरनाक कोई तरीका नहीं है, सिर्फ एक क्लिक कर दें, एक क्लिक कर दें। ये किसी ने किसी पे कमेंट भी दिया था कि अभी एप्स भी आ गए ना इस किस्म के, बस आप एक बटन दबाएं आपके पैसे बैंक से गए। आपको कहता कि ये नासूर है, उन्होंने कहा मैं तो अपने फोन में इसको रख नहीं सकती, मेरा तो अकाउंट खाली हो जाएगा, मैंने इतनी दफा दिन में क्लिक करने हैं। काबू में रखें अपने आप को, ये नफ्स का घोड़ा है, ये बहुत बंदे को शर्मिंदा करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मा अला मन इक्तसिब, कभी भी गरीब नहीं होगा वो शख्स जो दरमियाना रवि रखेगा। तो खुद से पूछें क्या महीने के आखिर से पहले पैसे पूरे हो जाते हैं? खत्म, शौहर की तनख्वाह खत्म, पैसे हैं कि बचते हैं कि क्या है? महीने के आखिरी दिन कैसे चलते हैं? पहली का इंतजार कितना होता है? ये सब छोटी छोटी चीजें आपको मुझे अपने दिल की हालत बता देंगी। कभी भी कम पैसों वाले गरीब नहीं मैंने देखे, ज्यादा पैसों वाले और ज्यादा ख्वाहिशों वालों को मैंने देखा है, वो और ही बड़े खर्चों में, बड़े कर्जों में होते हैं। गरीब कर्ज लेगा 100 200 का लेगा, आटा लिया चावल दिए, दूसरे चौथे दिन दे देगा जब तनख्वाह आएगी। बड़े लोग तो वो कर्जे ले आते हैं जो उनकी नस्लें भी नहीं अदा कर पाती। तो ये ख्वाहिशों का कर्ज ये इंसान के दिल को बीमार कर देता है। फिर उसके बाद काम करने के बाद, यानी पहली सूरत क्या थी, काम करने से पहले ये सब कर ले, अब करने के बाद इसकी भी 3 सूरतें हैं। नंबर 1, खुद अपना मुहासबा करे कि हकूकुल्लाह में कहाँ कोताही हुई कि मतलूब तरीके पर अदा ना कर सका, यानी अल्लाह के हक छोड़ती हूँ। कितनी नमाजें गई मेरी शॉपिंग की वजह से, कितनी नमाजें गई नींद की वजह से, फजर चली गई, अल्लाह के हक में कमी हुई कि नहीं हुई सोच लेते हैं हम। फिर हकूकुल्लाह में इखलास, खैर ख्वाही, इत्तबाए सुन्नत, अल्लाह तला के एहसानात याद रखना, और फिर इन सब में कमी और कोताहियों को भी याद रखना। फिर दूसरा, ऐसे हर काम पर मुहासबा करे जिन्हें छोड़ना इन्हें करने से बेहतर था, छोड़ना करने से बेहतर था। फिर जो जायज काम नहीं कर सका इस पर मुहासबा करे, और क्या इनमें अल्लाह तला की खुशनुदी और आखरत मतलूब थी, ताकि इस तरह वो कामयाब होगा, और अगर दुनिया मतलूब थी तो नाकाम रहेगा। दोबारा पढ़ेंगे ना सारे टॉपिक को, तो फिर आप एक एक जुमला पढ़ के ना थोड़ा सा रुकेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा खुलासा क्या निकला। फिर अपना मुहासबा करे, अव्वलन फराइज की अदायगी करे, और अगर नाकिस हो तो इसे मुकम्मल करे। फिर ममनुआत हैं, वो कहते हैं फॉरबिडन्स, या जिन चीजों से अल्लाह ने रोका है, इनमें किसी का इर्तकाब किया हो तो तौबा इस्तिगफार करके इसकी तलाफी करें। फिर जिस्मानी काम, और आखिर में अपनी गफलतों का मुहासबा करें। चौथी किस्म, शैतानी तसल्लुत की वजह से दिल की बीमारियों का इलाज। शैतान इंसान का दुश्मन है, इससे बचने के लिए अल्लाह ताला ने मुआवजात की तालीम दी है। क्या है मुआवजात, सब बोल दें, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और नास। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेआज़ा, इस्तेआज़ा क्या, जिसके जरिए किसी चीज की पनाह तलब की जाए, इस्तेआज़ा में नफ्स और शैतान की शरारतों को इकट्ठा जिक्र कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को फरमाया ये कलेमात सुबह शाम और सोते वक्त पढ़ा करो। दोहरा लेते हैं, आप भी मेरे साथ दोहराइएगा। अल्लाहुम्मा फातिरस समावाती वल अर्दी عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. یہ صبح شام کی دعاؤں میں آپ کو مل بھی جائے گی الگ سے دعا. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ میں لفظی نہیں بولتی کیونکہ لفظ آسان ہے سارے. اے اللہ، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، اے پوشیدہ اور موجود کو جاننے والے، ہر چیز کے پروردگار اور مالک، میں گواہ ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. میں اپنے نفس کے شر اور اس کے شرک، نیز میں خود اپنے نفس یا کسی مسلمان سے برائی کے ارتکاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں. تو استعاذہ، توکل اور اخلاص، تین چیزیں. اعوذ باللہ پڑھنا، پناہ مانگنا اللہ کی ان چیزوں سے، اور اللہ پہ توکل کرنا، اور اخلاص رکھنا، شیطان کا غلبہ روکتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ انہ لکم عدو مبین، ہمارے دل کی ساری بیماریوں کا پیچھے سے سرا پھر شیطان کے ساتھ جڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو مردہ نہ کرے، اس لیے کہ میں اور آپ ان ساری چیزوں سے بچ نہیں سکتے جب تک اللہ کا ساتھ اور شیطان سے جدائی نہ ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.